लगन बस एक यही, लगी 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 लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। के नूर हैं हम आत्मा के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम आत्मा के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही प्यारा सा गीत सभी ने सुना। हम सब की, हम सबके दिल की आवाज थी। लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत, हमें वापस घर जाना है, ऐसे कुछ शब्द थे। यही सबके दिल की आवाज है ना। भट्टी में क्यों आए हैं? तपस्या करने। तो भट्टी में आना, तपस्या करना, माना परिवर्तित होना, बदल कर जाना। भट्टी का अर्थ ही है पकना, और पकते हैं परिवर्तन होने लिए। तो सर्वप्रथम प्यारे बाप दादा, हमारी सर्व एडवांस पार्टी की दादियां, वरिष्ठ भाई और सर्व मधुबन निवासी तथा सारे दरी देवी परिवार की ओर से और हमारी ओर से भी इस मधुवन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, साथ साथ अनेक दादियों की कर्म भूमि, तो हम सब की ओर से आप सभी गुजरात के भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो यहाँ पांडव भवन में भट्टी करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छे समय पर आए हो, जबकि बारिश की मौसम लगभग समाप्त हो रही है, एकदम बाहरी मौसम है। वहाँ तो गर्मी होगी ना, गर्मी थी बहुत, बारिश नहीं पड़ी है, थोड़ी बहुत, पर बारिश जितनी होती उतनी और गर्मी होती है, और यहाँ इसका विरुद्ध है, बारिश पड़ने से ठंडी शुरू हो जाती है। तो अभी तो बाहरी मौसम है, बारिश खूब पड़ी है, चारों ओर झरने बह रहे हैं। देख कर आए कुछ झरने रास्ते में? अभी तो कम हो गए क्योंकि 3-4 दिन से नहीं पड़ी है बारिश, लेकिन बारिश के दिनों में बहुत बारिश पड़ती है और चारों ओर झरने ही झरने बहते हैं। लेकिन कई बार खतरा भी होता है क्योंकि पहाड़ टूटते भी हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन इस बार सब ठीक रहा और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, खूब हरियाली है चारों तरफ। तो ऐसे सुहावने समय पर आप आए हो, तो ये भी आपका बहुत बड़ा भाग्य है। आप सबने बहुत आश रखी होगी हम मधुबन जाएंगे, तपस्या करेंगे, क्योंकि चार धाम भी यही है, जो ब्रह्मा बाप के चार धाम हैं वो भी यही है। पहले सेवा केंद्रों पर कुछ न कुछ तैयार करते हैं, शांति स्तंभ भी बनाएंगे, बाबा के कमरे जैसा भी बनाएंगे, हिस्ट्री हॉल जैसा भी बनाएंगे, बाबा की झोपड़ी जैसा भी बनाएंगे, लेकिन जो असली चार धाम है वो तो यहाँ ही है। तो यहाँ हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सभी यही लक्ष्य लेके आते हैं कि हम यहाँ चार धाम करने जाते हैं। और आप में से कई ऐसे भाई बहने होंगे जो पहली बार मधुबन तपोभूमि में ठहरे हैं, नहीं तो आते तो होंगे, शांतिवन से चार धाम की यात्रा करने आते हैं लेकिन ठहरे नहीं हैं, पर पहली बार ठहरे हैं, वो हाथ उठाए। अच्छा, सारे? अच्छा, जो पहले भी ठहरे हैं मधुबन में रहे हैं वो हाथ उठाए, वो भी है पुरानी, क्योंकि जब से ज्ञान सरोवर फिर शांतिवन बना तो हमारे अधिकतर प्रोग्राम्स तो ज्ञान सरोवर में ही होते रहे, विंग्स के प्रोग्राम, फिर शांतिवन में भी प्रोग्राम बाप दादा की सीजन चलती रही, तो वो तो सब होता रहे, तो यहाँ रहने का मौका नहीं मिला। और अभी 2 साल कोरोना के कारण मधुबन आने का भी चांस नहीं मिला, और अभी सबको ये चांस मिला है, तो आप सब ने इसका, इस मौके का बड़ा फायदा उठाया है, तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। नाम तो अनेकों के होंगे, हमारी बहनों को ये प्रॉब्लम हो गई होंगी किसको ले जाएं किसको नहीं ले जाएं, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी हो गई होगी और यहाँ तो लिमिट है, इतनों को ही लाना है, तो ज़्यादा भी हो गए होंगे, और कई ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट मिनट कैंसिल भी कर दिया होगा कोई कारणवश, और कई ऐसे भी होंगे जिन्हों का लास्ट मिनट ऐड भी हो गया, अचानक लॉटरी लग गई, हाँ वो भी होंगे। तो हम कहते हैं कि जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली, तो अपने लिए ताली बजाए। तो मीठे बाबा ने यह बेहद यज्ञ रचा है, बेहद परिवार बनाया है, यह बेहद यूनिवर्सिटी है, तो घर भी है यूनिवर्सिटी भी है, बाबा कहते यज्ञ भी है, इस यज्ञ में सब स्वाहा करने आते हैं अपनी कमियां कमजोरियां बाबा के आगे रखते हैं, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं और ऐसे महसूस करते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। बाबा के ये चार धाम हमें बाबा के और नज़दीक ले आते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं तो माता पिता के रूप में बाबा हमारे बीच हैं, और उस माता पिता से हम सकाश ले रहे हैं ऐसा अनुभव करते हैं, माता पिता की जैसे गोद में बैठे हैं ये अनुभव करते हैं। तो माता पिता की गोद में बैठना और एक छोटा बच्चा बन जाना, तो जैसे बच्चे अपने माता पिता से बात करते हैं, मिलते हैं, उनका सुख अनुभव करते हैं, ये बाबा के कमरे में अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा की झोपड़ी में जाते हैं तो बाबा की झोपड़ी में बाबा को सखा रूप में अनुभव कर सकते हैं, सखा से दिल की बातें करते हैं, सखा कहो साजन कहो, उस रूप में अनुभव कर सकते हैं। जो भी दिल की बातें हैं बाबा से हम कर सकते हैं। बाबा के कमरे में माता पिता के रूप में अनुभव करें, बाबा की झोपड़ी में सखा साजन वो प्यार जताना वो अनुभव करें। बाबा प्यार से कैसे बच्चों को पत्र लिखते थे, और बाबा कई बार कहते थे कि लव लेटर, भगवान का प्रेम पत्र हम बच्चों को मिलता है, तो वो अनुभव कर सकते हैं कि जैसे बाबा ने हमको पत्र लिखा है और हमने बाबा को पत्र लिखा है, बाबा ने उस पत्र का रिस्पॉन्ड किया है। तो बाबा को पत्र भी लिख सकते हैं, उसका रिस्पॉन्ड भी आपको मिल सकता है। तो बाबा की झोपड़ी में यह अनुभव करें। फिर हिस्ट्री हॉल में जाएं तो बाबा को परम शिक्षक के रूप में देखें, जहां बाबा सनली पर बैठ करके मुरली चलाते थे, शिव बाबा ब्रह्मा तन में पधारकर ईश्वरीय महावाक्य उच्चारण करते थे, तो एक स्टूडेंट के रूप में टीचर के सामने बैठकर ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और आज कौन सा दिन है? 5 सितंबर। आज कौन सा दिन है? टीचर्स डे। तो सबसे बड़ा टीचर कौन? हमारा शिव बाबा है। हाँ, किसका बहुत बड़ा नामी ग्रामी टीचर होता है ना, तो स्टूडेंट को भी कितना नशा होता है। एक हमारे पास आए थे, उसने पीएचडी डिग्री की ली थी, तो वो बड़े नशे से कहता था, मेरा जो प्रोफेसर था ना वो सर्वपल्ली राधा कृष्णन था, और आज उनका जन्मदिन है, इसी के निमित्त सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन के निमित्त टीचर्स डे है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े प्रोफेसर थे, फिर राष्ट्रपति बने। तो इसीलिए बड़े नशे से वो कहता था कि मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के अंदर पढ़ा हूँ और पीएचडी डिग्री ली है, तो कितना बड़ा नशा। पर हमारा नशा तो उनसे भी ऊंचा। क्या है हमारा नशा? कि हमारा वो टीचर है जिसका कोई टीचर नहीं है। उसका तो फिर भी टीचर होगा ना, जिसने उनको पढ़ाया होगा, लेकिन हमारा वो टीचर है जिसका कोई टीचर नहीं, सब टीचरों का टीचर है। तो टीचर का नशा बाबा के हिस्ट्री हॉल में हम अनुभव करें कि हमको पढ़ाने वाला कौन और क्या पढ़ा रहे हैं। सारे शास्त्रों वेदों का सार समझा रहे हैं। इतना जो बाबा पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ने के बाद बाबा कहते और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सार मिल गया है, मन के सब प्रश्न सब समाप्त हो गए हैं, संतोष आत्मा में आ गया है, इच्छाएं सब समाप्त हो गई है, इच्छा मात्र अविद्या बन गई है, क्योंकि अंतर में भरपूर हो गए, ज्ञान के रत्न प्राप्त करके भरपूर हो गए। और हम जानते हैं कि यही ज्ञान रत्न फिर वो सच्चे हीरे मोती बन जाएंगे भविष्य में, हम उन रत्नों से खेलेंगे। लेकिन यहाँ हम किससे खेलते हैं? किससे खेलते हैं? ज्ञान रत्नों से। तो यहाँ ज्ञान रत्नों से खेलते हैं और वहां वो सच्चे रत्नों से खेलेंगे। तो उन रत्नों को तो बाबा कहते देखते हुए भी नहीं देखो, अभी तो और ही डर लगता है, कोई हीरे की अंगूठी पहन के आए तो डर लगता है ना, कोई हमारी उंगली न काट दे वो डर लगता है, चोर पीछे न लग जाए इसके, सोना पहनने में भी डर लगता है कहीं पीछे चोर न लग जाए। तो इसलिए बाबा ने यहाँ तो हमको त्याग मूरत बनाया है, यहाँ वनवा में बैठे हैं, वनवा में बैठे हैं, लेकिन बड़ा नशा है कि भविष्य हमारा बहुत उज्जवल है। दुनिया वालों को तो ये डर रहता है, पता नहीं आगे क्या होगा, इतना सोना हीरा जो कुछ भी है तो डर रहता है, चोर न लूट जाए, सरकार न रेड कर ले, आजकल वो भी डर है ना, सरकार कभी भी रेड कर लेगी, छापा मारेगी, आग न जला दे, है ना। भुज में जब भूकंप आया था तो कितने करोड़पति थे और वो भूकंप में सब अपने मकानों से बाहर निकले और अपनी आंखों के सामने देखा उनके इतने भव्य भव्य मकान, इमारतें, बिल्डिंग्स, वो धीरे 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 कैसे धराशायी हो गई और उनका सारा धन संपत्ति सब उसमें स्वाहा हो गया। तो न्यूज़ में क्या आया कि अरबपति करोड़पति रोडपति बन गया, रोडपति बन गए, तो करोड़पति भी रोडपति बन गए, सब संपत्ति खत्म। मानो कि आज जितना भी धन है इंसान को उतना डर है, इसीलिए यहाँ जितना त्याग वो त्याग ही भाग्य है हमारा, इसलिए कोई डर नहीं है किसी का भी। दादी जानकी को तो सदा ये नशा रहता था, जेब खाली कुछ भी हाथ में नहीं, कोई बैंक बैलेंस भी दादी के नाम पर नहीं, खीसा खाली और मैं हूँ दुनिया का वाली, सारे दुनिया का मालिक, इतना दादी कहते थे नशे से। तो इसीलिए यहाँ जितना त्याग उतना ही ऊंचा भाग्य, और मनुष्यों के पास जो कुछ है वो सदा डर में ही रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने तो हमें बहुत भाग्यशाली बना दिया। तो ज्ञान रत्नों से खेलो, इस मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकले और कुछ नहीं निकले। बाबा की मूल्यों में आता है ना, मीठा कान भी मीठे बनाओ, ये मुख भी मीठा बनाओ, ये आंखें भी मीठी बनाओ, सिविलाइज। ये कान केवल शिव बाबा के महावाक्य श्रवण करने के लिए है और किसी के लिए नहीं, इसकी बात उसकी बात, ये समाचार वो समाचार, कोई जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ का कलयुगी दुनिया का समाचार, सब रावण का समाचार है, जो कुछ भी है सब रावण है ना, क्योंकि रावण की दुनिया है। तो इसीलिए वो समाचार हम क्यों सुने, जिस रास्ते पर जाना नहीं उस रास्ते को देखना भी क्यों, सुनना भी क्यों। और फिर बाबा कहते ये मुख भी तुम्हारा मीठा हो, कान भी मीठे हो, क्या सुनना है, केवल ज्ञान ईश्वरीय महावाक्य सुनने हैं। मुख से बोलना क्या है, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानी, पर मत, बाबा कहते ये सब पर निकाल दो और एक पर जोड़ो। कौन सा पर, पर माना पंख, तो पर भी पर माना दूसरा ये होता है। तो ये पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानी, पर दर्शन, पर मत, ये सब पर 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 खत्म करो, पर एक पर जोड़ो। कौन सा है वो पर, हाँ जी, पर क्या, परमात्मा की मत। कौन सा पर जोड़ो, पर उपकार, ये जोड़ो, बाकी सब पर खत्म, पर उपकार, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब मेरे हैं, हम सबके हैं, क्योंकि हदे सब खत्म हो गए। वैसे भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन सचमुच वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है, ये बाबा ने हमें सिखाया है, दे अभिमान हमारा छुड़ा दिया है। आज भी बाबा ने कहा तुम यात्रा पर हो, तुम्हारी ये रेस है, और कहाँ पहुंचना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, घर जाना है, नई दुनिया में आना है, तो इस रेस में, इस दौड़ में दौड़ना है। लेकिन ये ऐसी दौड़ है जो कई पुरानों से नए आगे चले जा सकते हैं। कई नए कहते ना, हम तो बहुत लेट आए, और बाबा कहते हैं लेट आए पर दुरुस्त आए, क्योंकि कई बहुत पुराने भी होंगे लेकिन धीरे धीरे माया उनको खा गई तो लंगड़े हो गए। आप नए आए हैं, जवान हैं, तो शक्ति ज़्यादा है, आप आगे जा सकते हैं, इसीलिए किसी को देखना नहीं है ये इतना पुराना ये ऐसे कर रहा है, हम तो अभी आए हैं तो क्या होगा। लेकिन ये रेस है, रेस में पीछे वाले आगे चले जाते हैं और आगे वाले पीछे रह जाते हैं, जो दूसरों को देखते रहेंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो बहुत नए नए हैं वो कहते हैं ना हम आगे कैसे बढ़ें। तो आज बाबा ने कहा आगे बढ़ने का एक एक ही तरीका है, बस जो श्रीमद बाबा देते हैं उस पर चलो, बस तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कई पूछते हैं हमें क्या, हम क्या पुरुषार्थ करें, अभी नए नए आए हैं क्या पुरुषार्थ करें जब आगे बढ़े। बस एक ही पुरुषार्थ, जो श्रीमत हमको बाबा की मुरली से मिलती है उस अनुसार चलो, मन मत पर मत इन सब को छोड़ो। दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, वो यहाँ तक भी कहेगी कि काम विकार के बिना दुनिया कैसे चलेगी, क्रोध के बिना काम कैसे होगा, लोभ के बिना धंधा कैसे चलेगा, मोह के बिना परिवार कैसे चलेगा, अभिमान न दिखाएं तो लोग हमको गिराते रहेंगे, तो ये सब जरूरी है। फिर कहेंगे कहाँ तक सहन करें, और यहाँ बाबा कहते हैं ये विकार तो सब स्वाहा कर दो। सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, सहन करना कायरता नहीं है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर सहन कर लिया तो आपके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, खुश होना चाहिए, सहन कर लिया, समा लिया, बाबा को दे दिया जिम्मेदारी, बाबा को वो बोझ दे दिया, हल्के हो गए, मेरा कुछ नहीं। तो ये सब बाबा की मुरली से मिलता है, तो हिस्ट्री हॉल में बैठ करके वो बाबा की सारी श्रीमत याद करो, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा है, बाबा ने वो कहा है, और फिर अपने से लगाओ मैंने कहाँ तक उसको फॉलो किया है, कहाँ तक मैं उस पर चल रहा हूँ। और फिर बाबा के शांति स्तंभ पर जाते हैं तो अनुभव होता है जैसे ब्रह्मा बाबा ने दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डियाँ सेवा में लगाई, अपना तन मन धन सब स्वाहा किया, अपना सारा जीवन बाबा को सुपुर्द किया, उनका इतना त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा, जिससे आज ये इतना बड़ा वट वृक्ष, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खड़ा, एक बीज ब्रह्मा बाबा ने डाला। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन समर्पित करके इतने इतनों सबकी जैसे इनका सबका दिया जलाया, हम वो दिए हैं ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या सेवा के आधार पर कारण से। तो जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, फरिश्ता बने, तो शांति स्तंभ पर बैठ करके वो ही सोचना है मैं आत्मा कैसे फरिश्ता बन रही हूँ, ब्रह्मा बाप समान बन रही हूँ। और ब्रह्मा बाप समान बने तो फरिश्ता तो बन ही जाएंगे, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखेंगे तो फरिश्ता तो बन ही जाएंगे, और फरिश्ता बन गए तो वतन में तो सहज उड़ जाएंगे। ब्रह्मा बाप भी वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे फरिश्ता बने, पाप समान बने, वतन में आए और सब घर जाएं, मिलकर गेट खोले परमधाम का। तो बाबा बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, बाबा ने कहा ये प्रकृति भी इंतजार कर रही है कि कब हमारे होवनहार देवी देवताएं प्रकृति जीत बन करके, विकर्मा जीत बन करके प्रकृति पर राज्य करे। उसके लिए संपूर्ण निर्विकारी बन जाए तो प्रकृति हमारा आह्वान करे, पर उसके पहले प्रकृति अपना काम करे विनाश का। तो वो भी पूछ रही है कब करे, तैयार बैठे हैं, साइंटिस्ट भी तैयार बैठे हैं कब बटन दबाएं और युद्ध शुरू हो। एडवांस पार्टी भी पूछ रही है कि हम अपना काम कब शुरू करें, देवताओं को जन्म देना है ना, ये एडवांस पार्टी का काम है, तो कब देवताओं को सृष्टि पर लाएं। पर पहले जो होवनहार देवताएं हैं वो संपन्न तो बने तो और हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं क्या? वो तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें इंतजार नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, इंतजाम करना है। बाबा कहते हैं तैयार होना है, वो तो तैयार बैठे हैं, तो वो तो तैयार हैं, लेकिन हम कैसे तैयार होंगे, लक्ष्य हमारा एकदम पक्का होगा। आपको भट्टी का बैज भी मिला है, योग तपस्या भट्टी संपन्नता की ओर। हमें संपन्न बनना है, हमें संपूर्ण बनना है, हमें बाप समान बनना है, हमें फरिश्ता बनना है, हमें घर जाना है। ये बाबा कहते लात और तात लगी रहे, तो उसके लिए हम क्या करें? बाबा कहते एक श्वास, एक संकल्प, एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करो। दादी जानकी जी की ये दादी जानकी का ये बहुत बड़ा लक्ष्य रहता था, मेरी एक घड़ी भी वेस्ट न जाए। जब भी दादी जानकी को देखते थे, हमेशा या तो मुरली पड़ेगी, या तो मैगजीन पड़ेगी, या तो कोई विशेष कार्य करेगी, लेकिन ऐसे फ्री टाइम इधर उधर की बातें कभी दादी जानकी नहीं करते थे। बड़ों को हमने देखा, हर घड़ी सफल की, हर घड़ी सफल की। हाँ, दादी घड़ी तो पहनती नहीं थी, हमारी दादियाँ घड़ी तो नहीं पहनती, हम लोग तो फिर भी पहनते हैं। लेकिन किसी ने पूछा दादी से, दादी आप कितना एक्यूरेट आ गई, समय पर सब एक्यूरेट, घड़ी तो आपने पहनी नहीं है। तो दादी ने कहा मैं कोई घड़ी, एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ, तो मैं घड़ी का इंतजार नहीं करती हूँ। हाँ 10 बजे है तो जाए, क्योंकि मैं एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ। और बाबा कहते हैं तुम्हारी एक घड़ी, एक सेकंड, एक मिनट एक साल के बराबर है, क्योंकि इतना अमूल्य समय है हमारा, ये संगम युग का अमूल्य समय है। तो कैसे हम आगे बढ़ें, बाप समान बने, मम्मा समान बने, मम्मा ने क्या किया, बाबा ने क्या किया, हमारी दादियों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना है, बस ये लक्ष्य हो। तो चाहे आप पुराने हैं नए हैं, सब आगे जा सकते हैं, किसी को भी सीट नहीं मिली है, सिवाय एक लक्ष्मी नारायण के। हाँ बाबा मम्मा की सीट फिक्स है, बाकी किसी की सीट फिक्स नहीं हुई है। हम हंसी में बताते हैं कि एक डबल विदेशी भाई ने कहा मुझे दादी से मिलना है, ट्रांसलेशन करती थी मैं, तो दादी के पास गया, दादी को कहता है दादी जी मैं एक प्रश्न पूछूं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दादी ने कहा कहो। तो दादी को कहता है, दादी जी मुझे विश्वास है कि आप सेकंड श्री नारायण बनेंगे, आप सेकंड श्री नारायण बनेंगे। तो दादी उसको देखती रही, आश्चर्य से देखा दादी ने, तो आश्चर्य से देख करके मुस्कुराई। दादी ने कहा, क्यों बाबा ने कहा है क्या आपको, बाबा ने कहा है क्या आपको कि मैं सेकंड श्री नारायण बनूंगी? पर मुझे तो बाबा ने नहीं कहा अभी तक मुझे तो नहीं कहा है। लेकिन उसने कहा, नहीं दादी मुझे विश्वास है आप जरूर सेकंड श्री नारायण बनेंगे। तो दादी ने कहा, अभी बाबा ने आउट नहीं किया है, इसीलिए आप भी बन सकते हो, आप भी सेकंड श्री नारायण बन सकते हो। और जैसे दादी ने कहा ना, आप भी बन सकते हो, उसका तो मुंह ही खुला रह सकता, मैं मैं कहाँ बनूंगा। इतना बड़ा दिल तो था ना दादी का, तो आप भी बन सकते हो, क्योंकि बाबा ने अभी तक कोई डिक्लेयर तो किया नहीं है कोई पद। इसीलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा, जो शुरू शुरू में बाबा माला बनाते थे, तो जो पहले नंबर में आते थे वो बाद में धीरे धीरे पीछे चले गए, और जो पीछे थे वो आगे चले गए। इसीलिए ये रेस है, इसीलिए हम किसी को देखें नहीं, किसी को नहीं देखें, क्योंकि वैसे भी बाबा कहते हैं कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, किसी दूसरे एक का पार्ट ना मिले दूसरे के पार्ट से, हो ही नहीं सकता है। तो जब किसी का किसी से किसी के पार्ट से मिलना मिलता नहीं, तो हम दूसरे से अपनी भेंट क्यों करें? तो भेंट तो कभी करनी नहीं है, क्योंकि भेंट करेंगे तो दो बातें मन में आएगी, या तो ईर्ष्या पैदा होगी कि वो मेरे से इतना आगे जा रहा है और मैं पीछे हूं, या तो अभिमान आएगा, हाँ मैं बहुत आगे हूं ये तो देखो पीछे है, तो मैं बहुत आगे हूं उसका अभिमान आएगा, या मैं इतना नहीं कर पाती हूँ कर पाता हूँ और ये तो कितना आगे चला गया, तो ईर्ष्या पैदा होगी। तो ईर्ष्या भी उत्पन्न न हो तो, और अभिमान भी ना आए। उसका उपाय क्या है? किसी और को मत देखो। अगर भेंट करनी है तो अपने से भेंट करो। कल मुझे गुस्सा आ गया था किसी बात पर, थोड़ा सा नाराज हो गया था, पर आज वैसी परिस्थिति हुई पर मैं बिल्कुल शांत रहा, मेरी कोई हलचल नहीं हुई, तो आज मैं पास हो गया। कल फेल हो गया था तो आज पास हो गया, माना नंबर मिल गए, आगे आ गया। तो अपने से भले भेंट करो, कल से मैं आज बेहतर हुआ, आज से कल और बेहतर हूंगा। लेकिन ये नहीं कि आज जो करना है वो कल करूंगा, कल करने वाला परसों करूंगा, नहीं। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अभी कर, क्योंकि पल में प्रलय होगी, फिर कभी कर, हाँ फिर कब करेंगे? तो आज कल करते करते क्या हो गया, काल खा जाएगा, हाँ? क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। इसलिए अपने से भले भेंट करो, पर किसी और से भेंट मत करो, क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है। जैसे ड्रामा में एक्टर होते हैं, हर एक को अपना अपना पार्ट याद करना होता है, दूसरे का पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है, वही देखना होता है। अगर दूसरे का पार्ट देखते रहेंगे, वो क्या बोल रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो अपना पार्ट हम भूल जाएंगे, फिर हमारा पार्ट तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारा पार्ट अच्छे से अच्छा हो, उसके लिए मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है बस। तो दूसरों को देखते हुए बाबा कहते, किसी को मत देखो, हर एक अपनी रेस में दौड़ रहा है, वो आगे जा रहा है, मैं उसके आगे जाऊं ये नहीं सोचो, मैं आगे जाऊं बस, मुझे पहुंचना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? बाबा की एक एक श्रीमत का पालन करना होगा, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट्स में बाबा कहते नंबर लेने हैं, फुल मार्क्स लेने हैं। फुल मार्क्स अगर लेंगे तभी इतना ऊंच पद पाएंगे। तो जो सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं उस सब्जेक्ट को आगे उसमें मेहनत ज्यादा करनी है। अगर ज्ञान मनन चिंतन करने में हम थोड़ा कमजोर हैं तो उसमें मेहनत करनी है, ज्ञान की पॉइंट्स नोट करनी है, फिर उसका विचार सागर मंथन करना है। एक होता है मनन करना, दूसरा होता है मंथन करना। तो मनन करना माना उसको जैसे याद कर रहे हैं, और मंथन कर रहे हैं जैसे वो पॉइंट को याद करते करते उस पॉइंट से अनेक और पॉइंट्स निकाल रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं। तो वो मंथन हो गया। तो जब मनन होगा तभी मंथन हो सकेगा, और जब मंथन होगा तो शक्ति आएगी, तो ज्ञान की बढ़ोतरी हो जाएगी, फिर वो ज्ञान दूसरों को दे सकेंगे। कई कहते हैं मैं दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकता हूं, तो बाबा कहते हैं कि अगर दूसरों को नहीं सुना सकते माना खुद में भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास है तो मैं दूसरे को क्यों नहीं दे सकता हूं। पर नहीं दे सकते इसका मतलब खुद में भी ज्ञान नहीं है। कई समझते मेरे पास तो बहुत ज्ञान है लेकिन मैं दूसरों को नहीं दे सकता हूं, बाबा कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। कई कहते हैं मेरे में बोलने की कला नहीं है, ज्ञान देने की कला नहीं है, तो बाबा कहते बोल तो सकते हो ना, दुनिया भी बातें बोलने में होशियार हो और ज्ञान देने में होशियार नहीं हो, क्यों नहीं हो, ज्ञान भी तो बोलना ही है ना। और जितना ज्ञान दान दूसरों को करेंगे उतना आपकी झोली और बढ़ती जाएगी, इसलिए बाबा कहते कंजूस मत बनो। तो ज्ञान की गहराई में जाओ, ज्ञान की पॉइंट्स का मनन चिंतन फिर मंथन, हाँ पहले मनन फिर चिंतन फिर मंथन। मनन माना वही पॉइंट अंदर में सोचो, ये बाबा ने क्या कहा, बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, रिपीट करते हैं ना, तो वो मनन हो गया। फिर उसका चिंतन, ये बाबा ने क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, फिर उस पॉइंट में गहराई क्या है, उससे क्या प्राप्ति होगी। हम लोग, मुझे याद है हम लोग जब ज्ञान की ऐसे चिटचाट करते थे तो दो बातें पर चिटचाट होती थी। एक है कि ये ज्ञान की पॉइंट से लाइट क्या मिली, रोशनी क्या मिली, फिर इस ज्ञान की पॉइंट से माइट क्या मिली, शक्ति क्या भरी, जैसे आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान से क्या लाइट मिली कि मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं ये मुझे लाइट मिली, ये प्रकाश मिला, ये मुझे समझ मिली कि मैं कभी नहीं मरती हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, ये लाइट मिली। फिर उसे माइट क्या मिली, ताकत शक्ति क्या मिली, निर्भयता की शक्ति आ गई, निर्भय बन गई। नहीं तो आज सबसे डरावना अगर कुछ है, सबसे अधिक डर किस बात का लगता है, मृत्यु का डर। कई लोगों के तो हर वक्त मुख में ही रहता, हाय मर गई, हाय मर न जाऊं, मर न जाऊं, हाँ मैं मर जाऊंगी, तो मरना जैसे उनको उसके उनके मुख पर है। और बाबा क्या कहते हैं, हम तो कभी मरते ही नहीं है, सोचो तो, क्योंकि मृत्यु का डर सबसे ज्यादा डर है, और चीजों का डर इतना नहीं होगा, सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का। और बाबा ने आके सबसे पहले यही डर हमारा खत्म कर दिया। और कौन मेरे साथ है वो याद आ गया तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो डर किस बात का, भगवान मेरे साथ है। और बाबा कहा, बाबा रक्षक बन करके कैसे हमको अपनी छत्र छाया में ले लेते, बहुत अनुभव है। पर इतना ही निश्चय हो, अंधविश्वास नहीं है, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, परंतु विवेक के आधार पर है। विवेक के आधार पर ये भावना है, विश्वास है, ऐसे अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि परमात्मा रक्षक तो है ही है, पर उनके प्रति वो सच्ची वफादारी हो, एक बाबा दूसरा न कोई, ये सदा ही बुद्धि में हो, तो बाबा बंधा हुआ है। और बाबा बंधा हुआ है तो हम अकेले नहीं हैं, है ना? हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हम अकेले हैं। एक होता है अकेला होना और एक होता है एकांत में रहना। एकांत शब्द बहुत प्रिय शब्द है, बाबा भी कहते हैं एक के अंत में जाना, ये एकांत है, जब और कोई नहीं। पर अकेला ये प्रिय शब्द नहीं है, क्योंकि अकेला हूं मैं, क्या करूं, अकेला हूं। अकेला तो कभी नहीं हूं, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तो जब ये हमको अंदर में पक्का निश्चय है, तो डर किस बात का, तो वो माइट मिली हमको, डर खत्म हो गया। मृत्यु का डर क्यों लोगों को लगता है, क्यों लगता है डर, मृत्यु का डर? नाम सुनते ही किसी को और की मृत्यु हो गई तो खुद डर लगता है, पता नहीं मेरा भी क्या होगा, क्यों डर लगता है? कई कारण है, और बाबा ने सब ये कारण हमारे खत्म कर दिए। पहला कारण यही है कि लोग समझते मैं मरता हूं, और हम क्या कहते हैं, हम तो मरते ही नहीं है, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन जन्म लेती है आत्मा नहीं, गर्भ में प्रवेश होकर के चलो दे, फिर वो बाहर आती है, लेकिन जन्म तो नहीं है कि पहले नहीं थी और फिर पैदा हुई। अजर अमर अविनाशी, तो न जन्मती हूँ न मरती हूँ, बस चोला बदलती हूँ। इसीलिए चोले बाबा ने आज क्या कहा, ये मरा हुआ चोला है, मरा हुआ चोला, तो देह का भान टूट जाए। पर मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं ये देह नहीं हूं। पर मनुष्यों को ये ज्ञान न होने के कारण कितना डर लगता है, और बाबा हमको यही कहते हैं, जीते जी मर जाओ, अशरीरी बनना माना जीते जी मर जाना, देह में है और देह में नहीं है। फिर दूसरा डर क्यों लगता है, डर इसीलिए लगता है क्योंकि इतना सारा पदार्थ, कितना सारा जो हमने इकट्ठा किया है, वो सब छोड़ के जाना होगा, क्योंकि साथ में तो नहीं ले जा सकते, तो छोड़ के जाना होगा, तो छोड़ने का डर, क्योंकि मोह बहुत है। एक तो देह अभिमान है, फिर दूसरा मोह है, लोभ है, तो वस्तुओं का जो लोभ मोह है उसके कारण डर लगता है, ये सब मेरा छूट जाएगा यहीं, तो मृत्यु का डर लगता है। और बाबा हमको क्या सिखाते हैं, बेटे बच्चे मेरा कुछ भी नहीं, तेरा कुछ भी नहीं, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा, तो पहले से ही बाबा हमको न्यारा कर देते हैं, ताकि कहीं भी बुद्धि न जाए। तो न वस्तुओं में कोई लगाव है और न व्यक्तियों में लगाव है, कि वह चलो वस्तुओं में लगाव नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं गए, पर व्यक्तियों में इतना मोह होता है, जो बात मत पूछो, हमने देखा है, कई अनुभव आप लोगों को भी होंगे, इतना मोह होता है और बिल्कुल एकदम जर्जरी भूत है शरीर, फिर भी आत्मा निकलती नहीं है, क्योंकि शरीर में बहुत मोह है या किसी व्यक्ति में मोह है, और जब तक वो व्यक्ति उनके सामने नहीं आता तब तक प्राण छूटते नहीं है, होता है ना, क्योंकि इतना मोह होता है। और जब वो छुट्टी देता कि अभी भले जाओ, तब आत्मा निकल जाती थी, तब तक निकलती नहीं है व्यक्तियों में वो। और यहां बाबा क्या कहते हमें, किसी भी देहधारी में मोह नहीं रखो। तो न वस्तुओं में मोह, न व्यक्तियों में मोह। इसलिए डर किस बात का, मेरा तो कुछ है ही नहीं। फिर चौथा मोह किस में जात का, फिर क्यों डर लगता है, क्योंकि अपने जो जीवन में पाप कर्म किए हैं ना, वो डर लगता है कि सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। और बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे पाप कर्मों से बचो, अभी नया हिसाब किताब कुछ भी मत बनाओ, नहीं तो लास्ट में वो याद आएगा। नया कुछ भी जोड़ो नहीं, नया बंधन मत बनाओ, जो है वो खत्म करते जाओ। छोड़ना भी कुछ नहीं है, पर नया भी नहीं जोड़ना है, न बंधन में बंधना है, वो मकड़ी की जाल बन गई है। इसीलिए न्यारे प्यारे होते जाओ। और जैसे न्यारे प्यारे होते जाते हैं, इस देह के मोह से हम छूटते जाते हैं, तो मृत्यु के भय से ऊपर हो जाते हैं, हम तैयार हैं। इसीलिए कोई पाप मेरे से न हो, नहीं तो वो अंत में आएगा सामने। अगर कोई ऐसी बात है इस जन्म की, बाबा को बता दो और माफी ले लो, क्षमा मांग लो बाबा से, आज भी बाबा ने कहा, और बिल्कुल हल्के हो जाओ, वो बोझ हट गया, हाँ बाबा को दे दिया। और फिर संकल्प करो आगे फिर नहीं होगा, प्रतिज्ञा करो, व्रत रखो। तो ये पुरुषार्थ अपने आप से करना होता है। तो फिर कभी भी बाबा बुलावे तैयार है, एवर रेडी है। इसलिए मृत्यु का भी डर नहीं है। फिर और किस बात का डर होता है, मृत्यु का डर क्यों है, आगे क्या होगा, कई लोगों को वो डर लगता है, पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो भविष्य उनका अंधकार में है, क्या होगा भविष्य, कहाँ जाएंगे आत्मा, कहीं भटकेगी तो नहीं। और फिर उसके ऊपर लोग कई डराते भी हैं, 84 लाख योनि जब कहते हैं ना, तो डराते भी हैं। एक माता आई थी हमारे पास, तो उसके बेटे ने शरीर छोड़ा था, तो उसको पता नहीं किसने कह दिया कि तुम्हारा बेटा जो है ना, वो कौआ जाके बनाए, कौआ जाके बनाए। और सचमुच रोज एक कौआ उनके वो खिड़की पर आके बैठता था, कौ 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 करता था। उसको लगा पता नहीं मेरा बेटा ही तो नहीं आ गया है, तो रोज उस कौए को कुछ ना कुछ खिलाती थी, कौ 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 करता रहता था। तो अंदर में बहुत डरा है, मेरा बेटा कौआ जाके बना है। फिर जब ज्ञान मिला उसको, यहाँ आई, कोर्स वोर्स किया, बाबा के घर आई थी, तो कोई भी मनुष्य आत्मा को और कोई योनि नहीं मिलती है, मनुष्य को मनुष्य चोला ही मिलता है। तो उसको इतनी आथत हुई, चलो मेरा बेटा कौआ तो नहीं बना यानी कितना अज्ञान है, पर भविष्य का अंधकार है। जैसे कोई अंधेरे रास्ते पर जा रहा हो तो कितना डर लगता है, ठोकर लगेगी, कहीं गिर न जाऊं, पता नहीं रास्ता सही है नहीं है। तो भविष्य का अंधकार ये मनुष्य को मृत्यु से डराता है। और बाबा ने हमारा भविष्य कितना उज्जवल बना दिया है। आज भी अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा अगला जन्म कैसा होगा, इनसे अच्छा होगा, इनसे अच्छा होगा जरूर, क्योंकि पुण्य की कमाई जमा की है मैंने। तो पुण्य की कमाई जमा की है, वो संस्कार हमने अपने अंदर भरे हैं, तो वो संस्कार हमको कहाँ ले जाएंगे, इनसे अच्छा जन्म मिलेगा। अभी हमारी चढ़ती कला है और दुनिया की क्या है, गिरती कला है। तो हमारी चढ़ती कला है, उड़ती कला है। तो अगर इस समय भी अगर मेरा शरीर छूट गया तो भी हमको डर नहीं है, परंतु हाँ ये जरूर है कि संपूर्ण अगर नहीं बने हैं तो थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब फिर हम कब चुकतू करेंगे, फिर सजा खानी पड़ेगी, इसलिए अभी चुकतू कर ले। तो भविष्य का वो डर नहीं है, जन्म अच्छा होगा, लेकिन हम सब हिसाब किताब पूरा करके जाएं, संपन्न संपूर्ण बन के जाएं। तो बाबा ने हमें तीन बातें कही है। पहली बात कि जो कुछ भी होगा अचानक होगा, अचानक अचानक होगा। तो अचानक का सामना करने के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। जैसे स्कूल कॉलेजेस में सरप्राइज टेस्ट होती है, सरप्राइज टेस्ट कभी भी परीक्षा ली जा सकती है। तो सरप्राइज टेस्ट माना हर वक्त परीक्षा के लिए तैयार, कभी भी परीक्षा ली जाए तो एवर रेडी उसको कहेंगे, हर वक्त तैयार। लेकिन हर वक्त तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास, अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो हर वक्त के लिए तैयार नहीं हो सकेंगे और अचानक का सामना नहीं कर सकेंगे। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, इन तीनों का आपस में बड़ा संबंध है। क्योंकि अंत मति सो गति होगी, अंत की हमारी जो मति होगी उसी अनुसार ही गति होगी। तो अंत की मति हमारी बहुत श्रेष्ठ हो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो, कोई याद न आए, कोई सामने न आए, बस एक बाबा कोई देखूं और कोई मेरे कोई मोह किसी का खींचे नहीं मुझे, ये बहुत ऊंची स्थिति है। एक बाबा की ही याद में जाऊं, पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए और शरीरी अवस्था चाहिए, तो मक्खन से बाल सहज आत्मा निकल जाएगी। अगर मोह होगा शरीर में भी तो फिर जब अंतिम घड़ी आएगी तो बड़े कष्ट से शरीर छूटता है, इसलिए बाबा पहले से अभ्यास कराते हैं। आप मोए मर गई दुनिया, आत्मा निकल गई शरीर खत्म, तो उसके लिए दुनिया ही मर गई। तो वो अभ्यास हमको बाबा कराते हैं। तो क्या अभ्यास करना है? पहले देही अभिमानी बनने का अभ्यास, कर्म करते मैं आत्मा देही, इस देह द्वारा कर्म कर रही हूं। जब आत्मा का परिचय देते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, आत्मा कानों से सुन रही हूं, आत्मा मुख से बोल रही हूं। तो ये केवल थियरी नहीं है, सचमुच प्रैक्टिकल है। क्या सचमुच मैं ऐसे देख रही हूं? मैं आत्मा यहां भ्रकुटी के मध्य विराजमान होकर आत्माओं को देखूं, भ्रकुटी सिंहासन पर सब आत्माएं विराजमान है। अगर मैं उस रूप से देखती हूं तो तेरा मेरा सब खत्म हो जाएगा, सब मेरे हैं, या तो कोई मेरा नहीं, सब बाबा की है, मेरे क्या, बाबा के जो है वो मेरे है, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा तो एक बाबा है। और जब बाबा के हैं हम तो बाबा का जो कुछ है वो हमारा है, तो हम बाबा को ही देखते और किसी को नहीं। तो ये जब हमारी स्थिति हो, देही अभिमानी स्थिति है, कर्म भी छोड़ नहीं रहे हैं, कर्म भी पूरा करना है, जिम्मेदारियां भी पूरी निभानी है। जिम्मेदारी को छोड़ना भी गलत हो जाएगा। गीता में दिखाते ना, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सिर पर है और कहे कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, तो भगवान ने क्या कहा? ये तो कायरता है, मैदान छोड़ के कहां भागोगे, ये गीत भी है ना, मैदान छोड़कर भागोगे तो क्या भगवान को भी पाओगे, है ना, कौन सा गीत है एक। तो मैदान छोड़ के जाना भी नहीं है, हम सन्यासी नहीं है। कई लोग कहते हैं ना आप लोग तो सन्यासी हो, हम कहते हैं हम सन्यासी नहीं है, हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग है, हम कोई घर बार का सन्यास नहीं करते। फिर कई हम लोगों को कहते आप लोग अपने परिवार में जाते हो, हम कहते क्यों नहीं जाते हैं। और ही बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने परिवार वालों की भी खूब सेवा करो, उनको भी बाबा का बनाओ, वो क्यों वंचित हो जाए। इसलिए हम सन्यासी नहीं है, लेकिन किसका सन्यास कर रहे हैं, बुराइयों का, विकारों का। तो बेहद के सन्यासी, पर वो आत्मिक स्थिति है हमारी, इसीलिए जो भी देह से संबंधित बातें हैं उसमें फंसते नहीं है, बाकी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। बाबा मामा ने सब जिम्मेदारियां निभाई, दादियों ने सब जिम्मेदारियां निभाई, कुछ भी छोड़ा नहीं, तो हमें भी निभानी है। पर कैसे निभानी है, देही अभिमानी हो करके, तो तेरे मेरे से हम छूट जाएंगे। तो एक है देही अभिमानी बनना, मैं आत्मा ये सब कर रही हूं, मैं आत्मा, आत्मा को भूलना नहीं है। फिर उसके ऊपर कौन सी स्थिति है, विदेही स्थिति। विदेही स्थिति माना राजा जनक के समान, विदेही स्थिति कहते थे, महलों में रहता था लेकिन महलों में मोह नहीं था। मिसाल देते हैं ना, एक सन्यासी उनके सामने आया, उनके पास आया, आप विदेही राजा कहलाते हो, तो विदेही राजा कैसे हो, क्या उसकी परख है। तो राजा ने क्या दिया उसको, हाँ दीपक दिया कि जाओ मेरा महल देख के आओ, लेकिन दीवा न बुझे। तो महल तो देखा पर ध्यान तो दीवे पर था। तो राजा ने क्या कहा कि भले महल में रहता हूं लेकिन मेरा ध्यान दीवे पर है, क्योंकि दीवा बुझता कब है, दो कारणों से बुझता है। एक कारण है, एक कारण कौन सा है दीवा बुझने का, घृत खत्म हो गया तो दीवा बुझेगा। तो अगर ज्ञान का घृत सदा ही हमारे अंदर भरा हुआ है तो हम वो दीवा बुझेगा नहीं। और दूसरा कारण क्यों दीवा बुझता है, क्योंकि हवा का झोंका लगता है, हवा लगी तो दीवा बुझेगा भले घृत भी हो। तो माया की हवा, माया की आंधी दीवे को बुझा सकती है, लेकिन हमारा सहारा कौन, बाबा। तो इसलिए सब कुछ है लेकिन लगाव नहीं है, तो विदेही स्थिति है। और विदेही स्थिति होते होते अशरीरी स्थिति बन जाती है, अशरीरी। एक सेकंड में मैं आत्मा न्यारी बन जाऊं, मेहनत नहीं लगनी चाहिए। वो जब स्थिति हो तब कहेंगे कि बरोबर हम आत्मा अब तैयार हैं, तैयार हैं, तब संपन्न संपूर्ण बनेंगे। हलवा तैयार है, सबसे लगाव छूटा। तो देही अभिमानी भी होना है, विदेही भी बनना है, तो साथ साथ अशरीरी भी बनना है, तब हम एवर रेडी कहला सकेंगे। और तब ही हम अचानक के लिए तैयार होंगे, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास होगा। तो क्या करना है, अभी हमें बहुत काल का अभ्यास करना है। जब समय मिले न्यारे प्यारे हो जाओ, कछुए के समान बिल्कुल अपने अंदर में चले जाओ, एकांत प्रिय बन जाओ, हलचल से परे हो जाओ और अपने आप को उसी स्वरूप में अनुभव करो। बस मैं और मेरा बाबा। तो न्यारा भी बनना है, प्यारा भी बनना है, इतना सुंदर बैलेंस हम अपने जीवन में रख सकते हैं। छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है। पर वो उन सब के लिए ज्ञान से भरपूर रहना है, और ज्ञान से भरपूर फिर देना भी सहज होगा, तो उसमें भी नंबर लेने, योग में भी नंबर लेने, धारणा हमारी नंबर वन हो। कोई ऐसा मेरे ऊपर कोई पॉइंट आउट न करे, हाँ इसके अंदर ये अवगुण है। जो बाबा कहते हैं मीठा बनो मीठा बनो मीठा बनो, मीठे मीठे बच्चे तो क्या बनना है, मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए मीठा ही बोलना है। बोल मीठे होंगे तो मीठे ही बन जाएंगे। इसलिए अपने अंग अंग को सुगंध से भरना, तब बाबा कहते हैं ये शरीर आपको एक सुंदर शरीर मिलेगा, भविष्य में कंचन मिलेगा। तो चलिए, हमारी इंदिरा बहन आ गई है, अभी क्या करें, योग करें, परिचय थोड़ा ले। तो अभी आप सबका परिचय देंगे, इंदिरा बहन को बुलाते हैं। इंदिरा बहन आपका सारा ये 3 दिन की बट्टी देखेगी और पूरा प्रोग्राम आपका अरेंज करेगी, और सारे दिनचर्या वगैरह सब आपको सुनाएंगी भी। लेकिन अभी हम थोड़ा आप सभी का परिचय लेते हैं। आप इंदिरा बहन हमारे साथ ही हैं और हमारे साथ ही सेवा में उपस्थित है मधुबन में, अभी आपका परिचय लेंगे। ठीक है, इंदिरा बहन इसमें बहुत कुछ है। पहले तो है हमारा केशोद, केशोद वाले हाथ उठा।
ओम शांति। जो भी भाई बहने केशोद के कनेक्शन से आए हैं वे हाथ उठाएंगे। हाँ, काफी बड़ा ग्रुप है केशोद का, 150
केशोद है।
तो आप सभी का बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा ग्रुप कहाँ से आया है?
सुरेंद्र नगर।
सुरेंद्र नगर वाले हाथ उठाएंगे।
सुरेंद्र नगर,
हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बाबा के घर में। और इसके अलावा भी कोई है जो केशोद का भी कनेक्शन नहीं है, सुरेंद्र नगर का भी नहीं है, लेकिन लॉटरी लगी है किसी को? कच्छ अंजार मुद्रा हाथ खड़ा करेंगे। आप सभी का भी बाबा के घर में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो गुजरात ही हुआ, लेकिन गुजरात के अलावा किसी और प्रदेश के लोग कहाँ से?
दिल्ली,
एमपी, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली। तो जहां से भी आए हैं भारत के हर कोने से बाबा के घर में भाई बहने भट्टी करने आए हैं, तो चाहे केशोद है, चाहे सुरेंद्र नगर है, चाहे कच्छ अंजार मुद्रा है, और चाहे भारत के अलग अलग कोनों से जो भी आए हैं, सभी का बाबा के इस बेहद धरनी पर बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। हम और भी जानना चाहेंगे कि आप में से जो बाबा के 1 से 5 वर्ष के बच्चे हैं वे हाथ खड़ा करेंगे। 1 से 5 वर्ष के बच्चे थोड़े से हैं एकदम, आपका स्वागत है। और जो 5 से 10 वर्ष के बाबा के बच्चे हैं इसमें भी हाथ है, आप सभी का स्वागत है। 10 से 15 वर्ष वाले बच्चे, आपका भी वेलकम है बाबा के घर में। 15 से 20 वाले, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और जो 20 से ऊपर है वे हाथ खड़ा करें।
अच्छा, वो भी बहुत है।
लगभग सभी ग्रुप समान है, सिर्फ 1 से 5 वाले कम है, बाकी सभी समान है। और हमारी जो टीचर बहने हैं, राजयोगा टीचर बहने, वे सभी हाथ खड़ा करें। हाँ, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुछ टीचर बहनें नीचे बैठी हैं, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी पूरा पहली लाइन यहाँ तक का टीचर बहनों के लिए अगर खाली रखे
सोफा तो अच्छा रहेगा। टीचर बहनें सामने बैठे तो अच्छा रहेगा।
हाँ, और कुछ नीचे भी बैठी हुई है, इसलिए ये सोफा पूरा टीचर बहनों के लिए खाली रख देंगे। अभी नहीं, अगले सेशन से।
भाइयों का तो ये सेक्शन ठीक है।
हाँ नहीं, बहने बहुत पीछे जा रही है दीदी। कुछ बहने वो भी बैठी है, मैं समझती हूँ यहाँ पे और यहाँ तक आ जाएंगे क्योंकि दूसरी बहनें भी बैठी हैं। हाँ, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, भाई लोग यहीं रहेंगे, ये बहनें और यहाँ पे तीन और भी हैं ना, तो जो नीचे बैठी है वो आ जाएंगी वहाँ पे। तो टीचर बहनों का भी सभी का बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है। और जस्ट जानकारी के लिए कि केशोद की बहनें कौन सी हैं?
ये आप रूपा बहन
और इनके और
साथ
जी, और सुरेंद्र नगर वाली
आपका नाम क्या है?
टीम लीडर आप हैं सुरेंद्र नगर के, और कच्छ की टीम लीडर कौन है? हाँ, तो सभी का बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है। और शीलू दीदी का परिचय दे। तो बाबा ने तो बहुत विशेष वरदानों से भरा है शीलू दीदी को, तो हम यही कहेंगे कि हंस वाहिनी वीणा वादिनी सरस्वती का जिन्हें भगवान ने स्वयं वरदान दिया है, ऐसी ज्ञान की मूरत हमारी राजयोगिनी शीलू दीदी जी हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का पुनः पुनः स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। दीदी मुंबई महानगरी से निकले हैं और बाल्यकाल से ही आपको मम्मा बाबा और दादियों का पालना पाने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। चूंकि मम्मा बाबा दादियां मुंबई जाया करते थे और आप मुंबई से ही हैं, तो आपका अलौकिक जन्म मुंबई में ही हुआ है और विशेष करके ब्रह्मा बाबा की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ है। और फिर तो आप अलौकिक लौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए और 1969 में मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएससी की एग्जाम जस्ट देकर आए थे अभी, और फिर यहाँ आके आपने ट्रेनिंग की, टीचर्स ट्रेनिंग, और बाबा ने आपको टीचर के रूप में सेवा अर्थ अलग अलग स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस, इस तरीके से देश और विदेश की अलग अलग धरनी पर आप बाबा के कहे अनुसार सेवा अर्थ गए, बाबा के कई बिछड़े हुए लाल निकले, सेवा केंद्र खोलने के लिए दीदी निमित्त बने, और फिर 1976 में आपके लिए एक नई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई कि जब आप पार्टी लेकर 1976 में मधुबन में आए तो आपको मधुबन निवासी बनने का एक बहुत बड़ा ऑफर मिला, जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। तो आज इस धरनी पर 1976 से यहाँ पर रहकर दीदी देश और विदेश की सेवाएं दे रहे हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके पूरे विश्व में बाबा की सेवाओं का परचम फैलाया है, और वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, मधुबन की भर्तियों के कोऑर्डिनेटर हैं, और जब विदेशी सीजन में बाबा के विदेशी बच्चे आते हैं उनके कार्यक्रमों के कोऑर्डिनेटर हैं, और इन सब से बढ़कर जो वर्तमान में हम आपका मुख्य रोल देखते हैं वो ये कि दादियां तो अभी अव्यक्त हो चली हैं, मम्मा बाबा दादियों से जो आपने पालना प्राप्त की है वही पालना का रिटर्न आप सभी को दादी बनकर देते रहते हैं, जिस कारण से किसी को भी कोई कमी नहीं खलती है। और भी बहुत विशेष जो बात आपकी है, आप इजीली अप्रोचेबल है, बहुत इजीली बहुत सरलता से सब कोई आपके पास पहुंचते हैं और उतना ही निस्वार्थ प्यार आप सभी उनसे प्राप्त करते हैं। आपके जीवन में सदा ही तीन गुणों की त्रिवेणी बहती रहती है, सरलता, मधुरता और सहनशीलता। और यही कारण है कि आपका जीवन ही हम ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि कैसे बाबा ने जो हमें इतना पढ़ाया है उसे अभी हमें उन सभी का स्वरूप बनना है। तो हम अभी इन दीदियों को देखते हैं कैसे बाबा ने जो भी पढ़ाया है उनके स्वरूप बने हैं, तो हमारे सामने आदर्श हैं और उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी अपनी अव्यक्त स्थिति बाप समान स्थिति बनाने में मदद मिलती है। तो पुनः पुनः दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन।
अपना भी परिचय दो।
इस शरीर का नाम इंदिरा बहन है और 1987 में घर बैठे बाबा का ज्ञान मिला और उसके बाद 1998 में ये जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ हुई ज्ञान सरोवर अकेडमी से। आरंभ के समर्पित जीवन के 5 वर्ष हमने ज्ञान सरोवर की स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी, जहां बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने के लिए और उस पुस्तक का नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा, जो इतनी मोटी पुस्तक है, बाबा के महावाक्यों का कलेक्शन है, लिटरेचर में सेल होती है। तो बाबा ने उसके निमित्त बनाया और उसके बाद चूंकि हम नागपुर सब झोन से निकले हैं तो नागपुर सब झोन में रहने का अवसर मिला सब सेवा केंद्र पर, और चूंकि इस पार्क से जुड़े थे तो रमेश भाई उषा बहन से भी जुड़े थे, तो उन्होंने नागपुर के बाद गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूंकि शुरुआत तो हेडक्वार्टर में ही हुई थी और पुनः गामदेवी के बाद हेडक्वार्टर में चांस मिला, तो पहले तो ज्ञान सरोवर में मिला था, फिर सेवा केंद्र गए और सेवा केंद्र के बाद पांडव भवन का चांस मिला और उसके लिए निमित्त बने शीलू दीदी। तो वर्ष 2009 से इसी पांडव भवन में शीलू दीदी के ग्लोबल ऑफिस में बैठते हैं और उनकी जो सेवाएं हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। बाकी की भट्टी से संबंधित दिनचर्या और विशेष डायरेक्शंस अभी हम तो थोड़ी देर योग में बैठेंगे, 7:30 का गीत बजेगा और 7:30 बजे हमारे बीच में आएंगे मधुरवाणी ग्रुप, जो दिव्य आपका स्वागत गीत के साथ भव्य स्वागत करेंगे और उसके बाद हम आपको भट्टी की दिनचर्या से अवगत कराएंगे और जैसे ही वो पूरी हो जाएंगी फिर शीलू दीदी आप सभी को बाबा के घर से स्वागत टोली देंगे। ओम शांति। तो अभी हम योग में बैठते हैं।